समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
दुनिया में चेहरा देखता है और कोई चेहरे में दुनिया देखता है, यही है हस्ती मुस्कुराती जिंदगी का राज।
Absolutely, and what a beautiful ghazal in the mellifluous voice of Asha Bhosle. और जगजीत सिंह की भी इसमें आवाज़ है, एंड इट एक्चुअली रिमाइंड्स मी कि फरहत हम लोग दुनिया में कितने सो कॉल्ड चेहरों से मिलते हैं, सम दैट स्टे विद अस, सम बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, बट दैट यू नो दोस फ्यू पीपल इन आवर लाइव्स हु प्रोबब्ली नेवर स्टेड, वर नेवर पार्ट ऑफ आवर लाइफ फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बट स्टिल दे
याद आते हैं वो चेहरे बिल्कुल। और अमीर मिनाई का भी एक बहुत ही मशहूर शेर है इस पर, तुमको आता है प्यार पर गुस्सा, मुझको गुस्से पे प्यार आता है।
राइट, एंड इन फैक्ट जावेद अख्तर हैड पेंट अ ब्यूटीफुल गजल, अगेन इट वाज संग बाय जगजीत सिंह, कि मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं, कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं।
बहुत खूब, क्योंकि जो मोहब्बत का जो सिलसिला है वो इसी तरीके से चलता रहता है कि भुलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, खास तौर पे पहली मोहब्बत।
कोई नहीं बोलता है। और इतने रोमांटिक आपने मूड सेट कर दिया है, आई थिंक फॉर ऑल लेट्स स्टार्ट विद द शो नाउ।
जी बिल्कुल, और हम आपको ये भी बता दें कि आज सिबलिंग दिवस भी है, और अमर उजाला ने इस पर एक लेख प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि बचपन हुआ स्क्रॉल, रिश्ते हुए म्यूट, क्योंकि जिस तरीके से जो भाई बहन है वो पहले लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन फिर एक साथ हो जाते थे, अब सिर्फ व्हाट्सएप तक ही वो सीमित रह गए हैं, इंस्टाग्राम तक सीमित रह गए हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो सिर्फ मोबाइल फोन पर बीत रही।
राइट, तो फॉर एग्जांपल अगर अपने भाई बहन से आप रूठे हैं तो आप स्टेटस लगाएंगे रूठने वाला, इज इट, बट आई गेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द रोल ऑफ पेरेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट दे लेट देयर चिल्ड्रन नॉट बी एडिक्टेड टू द स्क्रीन सो मच, बिकॉज यू नो आई पर्सनली एक्सपीरियंस दिस फरहत, बिकॉज you can say that I have not given the phone to my children for, you know, to un log aaj bhi itna zyada ek dusre mein involved hai, so that makes me very very grateful in a way also.
Bilkul, phone se jitna dur raha jaye utna hi acha hai hum sabhi ke liye, wo chahe bacche hon ya bade hon.
Absolutely, to aaj ki sibling day mein kam se kam apne listeners se hum log ye keh sakte hain that for parents please make sure that your children they have a good time together as siblings, and to all the siblings, yes, this is one relationship for her that probably because parents at one point of time eventually they will go.
Jee.
So only people who are left with us are our own brothers and sisters who have seen our bonding with our parents. Varna aapke spouses bhi aapke bachpan mein jo yaadein thi aapke ghar ki wo nahi jante.
Balki sara kafi gharon mein to ye bhi dekha gaya hai ki aap ek saath baithe hue hain, father jo hain ek alag phone mein hai, mother ek alag phone mein hai aur bachche alag phone mein
hai. Which is very sad because but we have to make the changes, isn't it? And change happens.
Badlav zaruri hai.
बिल्कुल, तो वाई नॉट टेक दिस रिजॉल्व एंड प्रॉब्ली इवन कन्वे टू आर लिसनर्स कि जितना हो सके, हाँ टेक्नोलॉजी इज गुड, बट लेट इट नॉट बी द गाइडिंग फोर्स इन योर लाइफ, बिकॉज वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर इमोशंस, जज्बात, लव, दैट्स इट। ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस फरहत।
जी बिल्कुल, मैं हूँ फरहत नाज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा, और आइए मुख्य समाचारों से शुरुआत कर लेते हैं। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव का मतदान शांतिपूर्वक कल संपन्न हो गया। असम की 126, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीट के लिए कल वोट डाले गए। असम में 85% से अधिक और केरलम में 78% से अधिक वोट डाले गए। पुदुचेरी में 89% मतदान हुआ। पुदुचेरी में अब तक सर्वाधिक मतदान दर्ज किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए नाम वापस लेने और दूसरे चरण के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन था। तमिलनाडु में भी कल नाम वापस लेने का अंतिम दिन था और मतगणना 4 मई को होगी।
Scrutiny of nomination papers for the second phase of the West Bengal Assembly elections will take place today. The deadline for filing nominations for the 142 seats in this phase ended yesterday, with 13th April set as the final date for withdrawal of candidacies. stalwarts like BJP leader and leader of opposition Shubhendu Adhikari, Trinamool Congress chief Mamata Banerjee are in the fray in the second phase. Polling for the second phase is scheduled for April 29. Meanwhile, the deadline for withdrawing of nominations for the first phase concluded yesterday. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today said, that the partnership between India and Mauritius has witnessed remarkable and substantive progress in the span of just over a year. In a statement to media after meeting Mauritius Prime Minister Naveen Ramgoolam, Dr. Jayashankar said that they had wide-ranging discussions on various facets of the bilateral relationship. These encompass maritime cooperation, development partnership, health, education, capacity building, and people-to-people ties. The External Affairs Minister reiterated India's consistent and continued support to the government and people of Mauritius aligned with its developmental needs and priorities.
Dr. Jayashankar highlighted that during the state visit of Prime Minister Narendra Modi to Mauritius in March last year, the two governments jointly agreed to elevate bilateral ties to an enhanced strategic partnership. He said the decision stands as a powerful testimony to the enduring bonds of history and mutual trust that has long united people of the two nations. He added that this elevation equally reflects the expanding scope and deepening substance of the cooperation across a wide range of shared priorities, underscoring the unwavering commitment of both the nations. The External Affairs Minister said, India-Mauritius bilateral partnership occupies a unique and important place within India's three core foreign policy priorities, neighborhood first policy, Vision Mahasagar, and commitment to the global south. He stated that from the ENT hospital to area health centers and MediClinic, India has consistently supported Mauritius in expanding healthcare access across the island. He added that India and Mauritius share an expanding and dynamic partnership in clean energy and environment-friendly solutions. Rigyasa Pandey from News Desk.
The External Affairs Minister is in Mauritius to participate in the 9th Indian Ocean Conference.
Videsh Sachiv Vikram Misri 3 din ki America yatra par hain. Unhone Bharat America ke dvipakshiya sambandhon ki bhavishya ki sambhavnaon aur vartaman sthiti par Washington ke rananitik samuday ke agrani netaon ke sath baatcheet ki. Unhone vaishvik urja, khadya aur aarthik suraksha par apne vicharon tatha jari bhoo rajnitik ghatnakramon par charcha ki. Is yatra ne Bharat America ke dvipakshiya sambandhon aur mukhya kshetron mein jari sahyog ko aage badhane ki puri sambhavnaon ki समीक्षा करने का एक अवसर भी प्रदान किया।
Israel has strongly criticized remarks made by Pakistan's defense minister Khwaja Asif, calling them outrageous and questioning Pakistan's credibility as a neutral mediator in the ongoing Middle East tensions. In a statement, the Israeli prime minister's office said that calls for Israel's annihilation are unacceptable from any government, particularly one positioning itself as a facilitator of peace. The response came after Mr. Asif made controversial comments on social media, referring to Israel in highly critical terms. Israeli Foreign Minister Gideon Saar also denounced the statements, terming them as blatant anti-Semitic, and asserting that Israel will continue to defend itself against threats to its security. Pakistan has recently been credited with mediating a temporary 2-week ceasefire between the US and Iran, and is expected to host further peace talks in the coming days. However, the latest remarks have cast a shadow over its role in the diplomatic process. In a statement, Mr. Asif also referred to the ongoing conflicts in the region, alleging that continued violence involving Israel in Gaza, Iran, and Lebanon. The development comes amid heightened tensions in West Asia, even as diplomatic efforts continue to stabilize the situation and sustain the fragile ceasefire in the region.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स ईस्टर सप्ताहांत के दौरान यूक्रेन में 32 घंटे के युद्ध विराम की घोषणा की है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने छुट्टी मनाने के लिए संघर्ष को रोकने का प्रस्ताव रखा था। क्रेमलिन द्वारा जारी पुतिन के आदेश में रूसी सेनाओं को शनिवार से रविवार शाम तक युद्ध विराम का पालन करने का निर्देश दिया गया है। पुतिन की घोषणा पर यूक्रेन की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। युद्ध विराम सुनिश्चित करने के पिछले प्रयास भी अप्रभावी रहे हैं। रूस ने पिछले साल अमरीका और यूक्रेन द्वारा प्रस्तावित 30 दिन के बिना शर्त युद्ध विराम को प्रभावी रूप से अस्वीकार किया था, लेकिन रूस ने कई छोटे एकतरफा युद्ध विरामों की भी घोषणा की है।
एंड इन आईपीएल क्रिकेट, लखनऊ सुपर जायंट्स डिफीटेड कोलकाता नाइट राइडर्स बाय 3 विकेट्स इन अ थ्रिलिंग लास्ट बॉल फिनिश एट ईडन गार्डन्स लास्ट नाइट। Chasing a target of 182 runs, Lucknow Super Giants reached the total on the final delivery with 3 wickets in hand. And earlier put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 181 for 4 in their allotted 20 overs. A fine batting performance by Mukul Chaudhary, Ayush Badoni, both also scoring 54, guided Lucknow to victory. Mukul Chaudhary was declared player of the match. In today's fixture, Rajasthan Royals will face Royal Challengers Bengaluru at ACA Stadium at 7:30 p.m.
और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम जानेंगे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद से जुड़ी खबरें। तो सारा, सबसे पहले चेन्नई में क्या है खास?
वेल, टेलीकॉम ऑपरेटर वी विल इन्वेस्ट अबाउट 10% इन तमिलनाडु आउट ऑफ इट्स टोटल प्लांट इन्वेस्टमेंट ऑफ 45,000 crore rupees इन द कंट्री ओवर द नेक्स्ट 3 years. Sai Venkatraman, Circle Business Head, Tamil Nadu of Vi, said that the company has rolled out 5G services in Chennai. He said that they will bring the service to more cities including Coimbatore, Vellore and Puducherry. Over 3 years, they will be adding 3,000 sites as part of efforts to enhance infrastructure across the state. This circle has a subscriber base of more than 1.4 crore and has become a priority state for the company. In the next 3 years, they will be investing approximately 10% of the 45,000 crore rupees investment. Moving on to Bengaluru. Kempegowda International Airport of Bengaluru has successfully conducted technical trials of a contactless international travel system, marking progress towards biometric-enabled overseas travel. The trials led by Bangalore International Airport Limited or BIAL in collaboration with Indigo, DigiYatra and the International Air Transport Association demonstrated a seamless digital journey from ticket booking to boarding using facial recognition. Built on a self-sovereign identity or SSI framework, the system enables secure identity verification while allowing passengers to retain control over their personal data. It also tested app-to-app integration, reducing reliance on physical documents. This initiative is part of IATA's global efforts to standardize contactless travel, with Bengaluru currently the only airport in India participating in the program. Another news coming in from Bengaluru, Farhat. As part of the Swachh Sarvekshan 2025-26 Special Cleanliness Drive, the Bengaluru Central City Corporation carried out cleaning operations at 29 locations surrounding storm water drains or SWDs. Approximately 6.7 tons of waste were cleared during the drive, with participation from 290 Paurakarmikas and sanitation staff. Public awareness campaigns were also conducted to discourage waste dumping in drains and nearby areas. The initiative undertaken under the sixth phase of the action plan aims to ensure a cleaner city and improve Bengaluru's national ranking. The drive was led by Commissioner Rajendra Cholan and supervised by Additional Commissioner Development of Daljeet Kumar with support from senior officials and staff. Moving on to Hyderabad. Deakin University Australia and the Government of Telangana, through its AI Innovation Hub ICOM, signed a strategic memorandum of understanding in Hyderabad to advance applied artificial intelligence on Thursday. The agreement was signed and exchanged by Professor Ian Martin, President and Vice Chancellor of Deakin University, and Fani Nagarjun, founding CEO of ICOM, at the Telangana State Secretariat. The ceremony was attended by key government and academic leaders. This partnership focuses on establishing the ICOM Deakin Hub for Research in Intelligent Technology and Innovation. The collaboration prioritizes mass upskilling to create an AI-fluent workforce, joint translation research, and startup enablement. By leveraging Deakin's research capabilities and Telangana's high-performance infrastructure, the initiative aims to deploy ethical, scalable AI solutions for public service, delivery, and global economic impact. So, Farah, this was the latest that I had from these three cities of Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the latest that you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
जी सारा, राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो पोषण पखवाड़ा से जुड़ी खबर से हम शुरुआत कर लेते हैं, जिसका उद्देश्य है कुपोषण मुक्त भारत घोषित करना और शुरुआती बचपन में सही पोषण से बच्चों का दिमाग 85% तक विकसित करने में मदद करना। और इसकी शुरुआत की गई थी सन 2018 में 8 मार्च को, और महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कल इसके 8 संस्करण का शुभारंभ किया, जिसका विषय है जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क का अधिकतम विकास। श्रीमती अन्नपूर्णा ने कहा कि पोषण पखवाड़ा का उद्देश्य पोषण को जन आंदोलन बनाना है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता इस काम में अहम भूमिका निभा रही हैं।
महिला बाल विकास मंत्रालय का जो मैंडेट है बहुत ही वृहत है और लगभग हर गांव तक हम पहुंचे, तो निश्चित रूप से उसमें कहीं भी दो मत नहीं कि हमारी जो आंगनवाड़ी केंद्र की दीदियां हैं हर मौसम में वो हर घर तक पहुंचती हैं। आज 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में 8 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लाभार्थी हमारे केंद्र में हैं और भारत सरकार के माध्यम से जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, साथ ही साथ राज्य सरकार के द्वारा भी अलग अलग अपने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके माध्यम से बेहतर करने का प्रयास उनके द्वारा भी किया जाता है।
और अब हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के 136वीं जयंती के अवसर पर आज भीम ज्योति उत्सव का आयोजन करेगी। यह आयोजन कस्तूरबा गांधी मार्ग इंडिया गेट में लॉन्च किया जाएगा। इस 5 दिन के कार्यक्रम में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शनी और ज्योति उत्सव का आयोजन भी किया जाएगा और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक कई सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। और अब महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल घोषणा की कि मुंबई को जल्द ही एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मिलेगा। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने इस परियोजना के लिए जमीन भी आवंटित की है। मुंबई के क्रिकेट दिग्गजों को सम्मानित करने के लिए वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री फडणवीस ने कहा कि प्रस्तावित स्टेडियम में बैठने की क्षमता अधिक होगी और इसे इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि दर्शकों को 20 मिनट के भीतर कुशलतापूर्वक तीतर बीतर किया जा सके, साथ ही सभी स्टैंड से स्पष्ट दृश्य सुनिश्चित हो सके। और महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने कल प्लास्टिक प्रदूषण के बढ़ते खतरे पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 34 लाख टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से लगभग 40% नदियों, नालों और भूमिगत जल में चला जाता है। मुंबई में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही कि प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण, मत्स्य पालन, पर्यटन और जन स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। और महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नासिक त्र्यंबकेश्वर में होने वाले आगामी कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। और अब पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बूथ स्तरीय अधिकारियों यानी बीएलओ की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को रेखांकित करते हुए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के अनुसार बीएलओ को घर घर जाकर मतदाता सूचना पर्ची वितरित करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रक्रिया मतदान से कम 5 दिन पहले पूरी हो जाए। आज सवेरे में अब वक्त है महानगरों के मौसम का हाल जानने का। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की। तो आज दिन भर तेज हवाएं चलेंगी, न्यूनतम तापमान रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुंबई में लेकिन आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना है, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
Right, Farhat. And if we talk about Chennai, the sky would be partly cloudy over there. Temperature will hover between 28 and 38 degrees Celsius. Bengaluru will also have a partly cloudy sky. Minimum temperature was 24 degrees Celsius, while maximum will be around 35 degrees. Hyderabad will have a cloudy sky with haze. And the temperature in Hyderabad will hover between a minimum of 24 and a maximum of 38 degrees Celsius. And so, Farhat, now we have come to that part of our show when we turn the pages of history and say what important day is hidden probably, you know, on this day, that is the 10th of April. But before we delve into history, let's tell our listeners that today is observed World Homeopathy Day. The day is celebrated or observed to commemorate the birth anniversary of Dr. Hahnemann, the founder of homeopathy. The theme of World Homeopathy Day 2026 is Homeopathy for Sustainable Health. A report.
India accounts for one of the largest homeopathic workforces in the world, with nearly a quarter of a million registered homeopathic practitioners. To mark World Homeopathy Day, the Ministry of Ayush is organizing a two-day interactive forum in New Delhi. The forum will bring together leading policymakers, researchers, practitioners, and delegates to deliberate on the evolving role of homeopathy in building sustainable healthcare systems. Ayush Ministry said that the program will showcase key research advancements, public health initiatives and policy developments in the field of homeopathy. This year's theme, Homeopathy for Sustainable Health, aligns with global priorities such as universal health coverage and the United Nations Sustainable Development Goals, particularly SDG 3 on good health and well-being. Nitika Gupta, Akashvani News, Delhi.
और सारा देखा जाए तो कोरोना के बाद से लोगों का जो भरोसा है वो होम्योपैथी पे और ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि इसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, आप नॉर्मल दवा के साथ भी होम्योपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
राइट, एंड द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी इज प्रॉब्ली दैट यू नो every homeopath asks everything about your personal, you know, it's a very individual targeted you can say treatment, because allopathy is like ek dawa iske ye in cheezon ke liye, but you know we all know that all of us are different, our bodies are different, we have different allergies, we have different this, but a homeopath takes into account all of these. Wo aapse sare sawal puchenge, aapko meetha pasand hai, aapko namkeen pasand hai, and then they, you know, the tinctures that are there, then they devise them. So I think yes, it's a very safe and very effective treatment. And we remember the founder of you, we can say, homeopathy, Dr. Hahnemann today, jinki wajah se aaj World Homeopathy Day manaya jata hai. Now, Farhad, let's quickly turn the pages of history. And I go back to the year 1875, when Swami Dayanand Saraswati established the Arya Samaj at Bombay. And in 1877, he established it in Lahore.
सन 1912 की अगर बात की जाए तो आज के दिन विश्व प्रसिद्ध जहाज आरएमएस टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर इंग्लैंड से रवाना हुआ.
And on this day in 1955, India and Vietnam affirmed the Panchsheel.
1916 में एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की. और 1973 में अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कंप्यूटर तकनीक के क्षेत्र में शुरुआती कदम बढ़ाया.
On this day in 1982, International Satellite or INSAT-1A was launched. It was the first operational multipurpose communication and meteorology satellite procured from US. And on this day in 1997, announcement of UP's 70th new district was to be renamed after Jyotiba Phule.
और 1998 में उत्तरी आयरलैंड में शांति समझौते गुड फ्राइडे समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसने दशकों पुराने संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में अहम भूमिका अदा की.
And now, Farhad, when we talk about some of the personalities, तो हमारी फेहरिस्त में सबसे पहला किसका नाम है?
सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता पूर्व भारत के प्रतिष्ठित संपादकों और उदारवादी दल के संस्थापकों में से एक सी वाई चिंतामणि की. वह प्रयागराज के एक साप्ताहिक पत्र द इंडियन पीपल और पटना के हिंदुस्तान रिव्यू का संपादन करते थे. सी वाई चिंतामणि भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी दल परिसंघ के सदस्य रहे. गोलमेज सम्मेलन में उन्हें उदारवादी दल का प्रतिनिधि भी चुना गया.
Also, today is the birth anniversary of Asif Ali Asghar Faizi. He was an educator, jurist, author, diplomat, and also an Islamic scholar who is considered one of the leading pioneers of modern Ismaili studies. He served as India's second ambassador to Egypt, that is from the year 1949 to 52, and vice chancellor of the University of Jammu and Kashmir from 1957 to 1960. His best known literary work is Outlines of Mohammedan Law, which states that in order to understand Islamic law, one has to be familiar with historic and cultural background of the law. He was honored with the Padma Bhushan by the President of India in 1962, which is India's third highest civilian award.
और आज के दिन भारत के अग्रणी औद्योगिक समूह BKKM बिरला समूह के संस्थापक घनश्याम दास बिरला का जन्म हुआ था. वे स्वाधीनता सेनानी भी थे. समूह का मुख्य व्यवसाय कपड़ा और सीमेंट, रासायनिक पदार्थ, बिजली उर्वरक जैसे चीजें थी. और गांधी जी के मित्र रहे, ये सलाहकार रहे और सहयोगी भी रहे. भारत सरकार द्वारा इन्हें सन 1957 में पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया.
Also on this day, well, Kishori Amonkar's birth anniversary is today and she doesn't need any introduction. A vocalist who belongs to the Jaipur Gharana, she is considered to be one of the foremost classical singers in India. She was a performer of the classical genre Khayal and the light classical genres of Tumri and Bhajan.
बिल्कुल. और किशोरी की गायकी के चहेते सारे देश में बड़ी संख्या में हैं. गायन के अलावा वो एक श्रेष्ठ गुरु भी हैं. उनके शिष्यों में मानिक भिड़े, अश्विनी देशपांडे, आरती कंकलेकर जैसी कई जानी मानी गायिकाएं भी हैं.
Right, and we all know that she was trained by her mother, Mogubai Kotikar. However, she has stated in an interview that her mother was an exacting teacher, initially teaching her by singing phrases and making Amonkar repeat them. And in the early stages of her career, she travelled with her mother to performances, accompanying her on the Tanpura while Kurdikar sang. तो कह सकते हैं ना कि जो जो संगीत की जो होते हैं we have that term, जो practice होती है, जो रियाज होते हैं, वो तो बचपन में ही आगोश से ही शुरू हो जाते हैं. So people who are blessed to be born in such creative households, I think Kishori Amonkar was one of them.
Be
श्रोताओं, आज ही के दिन हमें अलविदा कहा मशहूर शास्त्रीय संगीतज्ञ, गजल गायिका और पद्मश्री से सम्मानित शांति हीरानंद चावला ने। मलिकाए गजल पद्म भूषण बेगम अख्तर की रत्न शिष्य कहे जाने वाली बेगम साहिबा की रवायत को कायम रखने वाली सबसे मजबूत स्तंभ डॉक्टर शांति हीरानंद ही थी। इन्होंने बेगम अख्तर की गाई ठुमरी, गजलें और दादरे को इतनी खूबसूरती से गाया कि जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो आइए सुन लेते हैं उनकी ये।
फिर बुला भेजा है फूलों ने गुलस्तानों से, तुम भी आ जाओ के बातें करें पैमा
Today is the birthday of Sanjeev Kapoor. अगर आपको याद होगा फरहत, आई थिंक खाना खजाना ने तो एक रेवोल्यूशन ला दिया था, you know?
हर घर में जो है लोग खाना सीख रहे थे बनाना।
Yes, and you know, there were, you, अब तो इंटरनेट का दौर है, people have their own YouTube channels, even Sanjeev Kapoor has one. But I remember it, Sanjeev Kapoor became a fad, और वो you know ZTV पे उसका जो खाना खजाना आता था, and then he you know was launching his books also, his recipe books. People used to just you know procure them at bookshops. That was Sanjeev कपूर की रेसिपी है। तो आई थिंक ही इज क्रेडिटेड ऑफ बिकमिंग वन ऑफ द फर्स्ट सेलिब्रिटी शेफ्स, क्योंकि शेफ्स कभी भी सेलिब्रिटीज नहीं होते थे, बट ही वाज द फर्स्ट वन। एंड टुडे ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी दैट ही हैज इंस्पायर्ड, चाहे आप यू नो रणबीर ब्रार की बात करें, इज्जत हुसैन साहब की बात करें, सो मेनी ऑफ देम हु हैव गॉट द सेलिब्रिटी स्टेटस, बट संजीव कपूर वॉज द फर्स्ट सेलिब्रिटी शेफ। एंड टुडे वी ऑल्सो रिमेम्बर Vijay Kapoor. Yes, today is his death anniversary. He was a director who predominantly worked in Hindi film cinema, and of course during the 70s and the 80s he's best known for directing the film Call Girl. In fact, agar aap Vijay Kapoor ki baat kare, he was from the Kapoor khandan. He was, of course, we all know that cousin of Raj Kapoor, but he chose films that had very unconventional and bold topics. So Call Girl was one film that came in 1974. It was directed by him.
Ji bilkul, aur sara 1988 mein unhone Doordarshan ke liye ek telefilm bhi banayi thi Akanksha, jo sharirik divyangta par aadharit thi.
That's right. और इसी फिल्म का जिसकी हमने बात करी थी फरहत, उसका एक गाना है which is very you know it was critically acclaimed, sung by लता एंड किशोर।
और श्रोता, आज ही के दिन हमें अलविदा कहा उर्दू के सुप्रसिद्ध शायर और कवि नाजिश प्रतापगढ़ी ने। नाजिश को साहित्य का हिमालय कहा जाता है। उन्होंने अपने नाम के साथ बेलह का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। उनके अब तक 12 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और सभी पर उन्हें अवार्ड मिले हुए हैं। और सन 1984 में नाजिश को उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं के लिए उर्दू साहित्य के सर्वश्रेष्ठ सम्मान गालिब से सम्मानित किया गया था। उनका कहना था, फूट चुकी है सुबह की किरणें, सूरज चढ़ता जाएगा, रात तो खुद मरती है, सितारों तुमको कौन बचाए, तन्हा तन्हा रो लेने से कुछ ना बनेगा, कुछ ना बना, तन्हा तन्हा रो लेने से कुछ ना बनेगा, कुछ ना बना, मिलजुल कर आवाज उठाओ, पर्वत भी हिल जाए।
क्या बात है, दैट इज सो ट्रू के इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टुगेदर एंड रेज योर वॉइस अगेंस्ट व्हाट यू फील इज नॉट राइट। एंड विद दैट इट्स टाइम टू कॉल अ रैप टू आवर शो, बट प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभात हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM. Thanks for tuning, listeners. Have a great, great day ahead.
Namaskar.